यशोदानन्दन व्रजजनारञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी 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 देयो दादा माधव कुंज बिहारी देयो दादा माधव कुंज बिहारी जयो राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा प्रभु रूपान् प्रभु रूपान् प्रभु रूपान् वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैवं नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति का भवति नैष्टिकी आज हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का पंचम दशम अध्याय का पांचवा श्लोक पाठ करेंगे। इनका शीर्षक है यमला अर्जुन वृक्ष का उद्धार। सभी लोग पीछे मेरे दोहराइएगा। यदृच्छया च देवऋषि भगवान तत्र कौरव पश्यात् नारद देवो शिभानौ सम्बुद्याथ यदृच्छया च देवर्षि यदृच्छया च देवर्षि भगवांस्तत्र कौरव भगवांस्तत्र कौरव तपस्यान् नारदो देवो अपश्यान्नारद देवो शिभानौ सम्भौ सम्बुधायत शिभानौ सम्बुधया यदृच्छया च देवऋषि यदृच्छया च देवऋषि भगवांस्तत्र कौरव भगवांस्तत्र कौरव अपश्यान्नारद देवो अपश्यान्नारद देवो शिभानौ सम्भुदयाथ शिभानौ सम्भुदयथ माताजी। शब्दार्थ इस प्रकार है, यदृच्छया संयोगवश सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए च तथा देवऋषि देवताओं में परम संत पुरुष भगवान अत्यंत शक्तिशाली तत्र वहां जहां कुबेर के पुत्र क्रीड़ा कर रहे थे, कौरव हे महाराज परीक्षित अपश्य देखा नारद परम संत ने देवो देवताओं के दोनों बालकों को श्रीमानों नशे से उन्मत्त आंखों वाले संबुदया समझ गए। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। हे महाराज परीक्षित, उन दोनों बालकों के सौभाग्य से एक बार देवऋषि नारद संयोगवश वहां प्रकट हो गए। उन्हें नशे में मस्त तथा आंखें घूमते हुए देखकर नारद उसकी दशा समझ गए। तात्पर्य कहा गया है चैतन्य चरितामृत में, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। नारद मुनि जहां भी जाते हैं और जिस मुहूर्त में वे प्रकट होते हैं उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा भी गया है कि चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार सारे ब्रह्मांड में भ्रमित करते रहते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग जाते हैं तो कुछ नरक जाते हैं। भ्रमण करने वाले ऐसे लाखों जीव में से जो अत्यंत भाग्यशाली होता है उसे ही कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का सन्निधन प्राप्त हो पाता है। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना जाता है जो भक्ति लता बीज प्राप्त कर पाते हैं। उस भाग्य में कुबेर के दोनों पुत्रों को भक्ति का बीज प्रदान करने के लिए ही नारद प्रकट हुए। यद्यपि वे दोनों नशे में उन्मत्त थे, संत पुरुष जानते हैं कि पतित आत्माओं पर किस तरह कृष्ण की पतित आत्माओं पर किस तरह कृपा की जाती है। तम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं तथापि स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकलपत्रुभ्यश्च कृपा सिंधु भय वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यहां पर ये प्रसंग दिखाई पड़ रहा है कि श्रीपाद नारद मुनि अब सौभाग्यवश नल कुबेर और मणिग्रीव का ये सौभाग्यवश ऐसा उनका घड़ी चला कि नारद मुनि के रास्ते को रास्ते के बीच में नल कुबेर और मणिग्रीव आ खड़े हुए। तो वर्णन आता है कि नारद मुनि जब विचरण कर रहे थे अपनी स्व इच्छा से, तो नारद मुनि जो स्वतंत्र आत्माएं हैं और भगवान की भक्ति की शक्ति से हर एक ब्रह्मांड में बिना कोई लाइसेंस या बिना कोई वीजा से वो भ्रमण कर सकते हैं। और वैसे भी भ्रमण करते हुए जब इस स्थान पर आ पहुंचे जहां पर नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों भी इस प्रकार नशे में चूर थे, पूरी तरह अब उनकी ऐसी दशा थी कि वो अन्य अप्सराओं के साथ क्रीड़ा खेलते हुए अपने आप को पूरी तरह डुबो दिए थे। तो यहां पर इस प्रकार श्रीपाद नारद मुनि का वहां पर आगमन होता है। तो वैसे स्थान पर आते ही उन लोग ये भूल जाते हैं कि नारद मुनि की क्या उनका महिमा है, क्या उनका प्रभाव है। और इस बात को भूलने के कारण नारद मुनि को ठीक उचित आदर सम्मान नहीं देते। नारद मुनि केवल देखने मात्र से उनकी दशा को जान लेते हैं कि इनका जीवन कैसे जा रहा है। तो अब यहां पर नलकुबेर और मणिग्रीव के जीवन को देखिए कि कैसे उनके जीवन कैसा मोड़ खाता है। कि जब भी किसी के जीवन में अगर भक्त की संगति उसे होती है उसी समय उसका जीवन पलटता है। हमारे जीवन का जो दुष्ट रूपी जो जीवन है उसको त्यागने का मुख्य जो साधन है वो है साधु संगति। एकमात्र हमारे जीवन में साधु का प्रवेश होने के बाद ही हमारा जीवन पलटता है। जैसे कि रामायण में जहां पर वर्णन आता है कि जब हनुमान जी जब लंका में जब छलांग लगाकर गए तो एक कुटिया में राम राम नाम सुन रहे थे, तो उसी कुटिया में प्रवेश किए तो विभीषण से मुलाकात हुआ। विभीषण से जब परिचय पूछे तो विभीषण ने बताया अपना परिचय विभीषण ने जब परिचय पूछा हनुमान को तो हनुमान ने कहा मैं रामदूत हनुमान हूं। और जैसे ही उन्हें ये पता लगा कि ये प्रभु रामचंद्र जी के भक्त यहां पर आए हैं, उसी समय विभीषण के आंखों से अश्रु धारा बहने लगी और विभीषण गदगद होकर बड़े प्रसन्न हो गए। तब हनुमान ने पूछा कि आपके इस प्रकार आंखों में आंसू देख रहा हूं, इसका क्या कारण है? विभीषण ने कहा अब मुझे निश्चित है कि प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन होगा, क्योंकि अब मुझे भगवान का भक्त दर्शन हो गया है। तो जब भगवान का भक्त हमारे जीवन में अगर आता है तो यह निश्चित है कि आगे जाकर भगवान का दर्शन होगा। और यही यहां पर अब इसी दृश्य को हम देखेंगे कि किस प्रकार नारद मुनि इनके जीवन में प्रवेश किए, कैसे इनको भगवान का साक्षात लीलाओं का दर्शन करने को सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है जब साधु संगति जब होता है तब हमारा वास्तविक जीवन शुरुआत होता है। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। जैसे उपनिषद में एक घटना आती है, एक चोर था, ये इतना बड़ा चोरी करने में इतना प्रवृत्त हो चुका था, इसकी आदत इतनी बुरी लग चुकी थी कि ये चोरी छोड़ ही नहीं पा रहा था। तो एक दिन चोरी करने के विचार में वो महल में घुस गया और महल के जो मुख्य जहां पर खजाना रखता है उस स्थान पर घुसकर बड़ी चतुराई से इन्होंने बिना कोई चिन्ह छोड़कर किसी प्रकार का नामो निशान नहीं छोड़ा, वहां से चोरी करके भाग गया। अब जब सभी लोग तलाश करने लगे कौन चोर है, पकड़ में नहीं आया, तो एक विद्वान योगी को बुलाया गया। तो योगी जो था ये पद चिन्हों को देखकर पकड़ लेता था, तो उसी स्थान के पद चिन्हों को पकड़कर उन्होंने खोजना आरंभ किया। जब आरंभ किया तो सिपाहियों को उन्होंने अपने साथ लेकर उस पद चिन्हों के साथ पीछे पीछे जब चलता हुआ गया तो जंगल की ओर गया। अब जब जंगल की ओर गया तो जंगल के उस स्थान पर आ पहुंचा जहां पर सत्संग चल रहा था। अब इस सत्संग के माहौल के बीच में खोजते हुए आया, लेकिन किसी सिपाही ने सत्संग के बीच में हल्ला नहीं मचाया। उन लोग भी सोचे चलो साधु लोग सत्संग सुन रहे हैं, वो हो जाने दो, फिर बाद में तलाश करते हैं। और सब कुछ वहां पर सत्संग खत्म हुआ तो बारी बारी से सबके पद चिन्हों को पढ़ रहे थे, तो सबका ढूंढा मगर किसी का नहीं मिला। अंत में एक बचा और उसी का ही मिल गया और उसे पकड़ के राजमहल में लाया गया और राजा को कहा सिपाही लोगों ने कि यही चोर है। तो राजा ने पूछा तो तुम सत्संग में बैठे थे, तुम साधु हो, तुम कैसे चोरी कर सकते हैं, क्या तुमने चोरी किया? इन्होंने कहा मैंने इस जीवन में चोरी नहीं किया। तुमने चोरी नहीं किया? तो ये लोग झूठे हैं। सिपाही पर बरस पड़े और सिपाही को फटकारने लगे, तुमने गलत व्यक्ति को चुरा के पकड़ के लाया इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। इन्होंने कहा नहीं नहीं इन्हें मत दंड दो, वास्तविक में चोर ये नहीं चोर मैं ही हूं, तुम चोर हो, नहीं नहीं तुम इनकी रक्षा के लिए इस प्रकार ऐसे करो, ये साधु का स्वभाव है। बोला नहीं मैं जानता हूं कि वो खजाना कहाँ है। तो बोला ठीक है, तो जाकर उन्होंने सारा खजाना दे दिया। अब जब सारा खजाना दे दिया तो जब वापस आए राजा के पास, राजा ने फिर पूछा कि क्या तुम चोरी किए? तो बोला हाँ मैंने चोरी किया, मगर तुम तो कह रहे थे कि मैंने चोरी नहीं किया। हाँ मैंने इस जन्म में चोरी नहीं किया। तो अब राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोल क्या रहा है। राजा ने पूछा कि मुझे ठीक ठीक समझाओ कि तुम कह क्या रहे हो, जो बात चल रहा है आपके मुख से। तो इन्होंने कहा मैंने जो चोरी किया था वो गए जन्म में किया था, यानी कि जब सत्संग के लिए जब गया था तो उस सत्संग में साधु के मुख से उन्होंने यह सुना कि जैसे ही कोई साधु संगति प्राप्त करता है उसी क्षण उनका नया जीवन शुरुआत होता है। और इसीलिए आज मैं जब से ये सत्संग के द्वारा मैंने ये विचार कर लिया कि आज की बात कभी चुगी नहीं करूंगा, जो हुआ वो सब मेरे गए जन्म का हिस्सा था, बाकी आप जो सजा देना हो दे सकते। राजा बड़े प्रसन्न हो गया। तो वास्तविकता जो साधु संगति के द्वारा व्यक्ति का एक नया जीवन शुरू होता है, और यहां पर नारद मुनि की विशेष कृपा से अब ये दोनों नशे में जो चूर है, जो इतने पाप कार्य में लगे हुए, इनका भी एक नया जीवन शुरू होगा। नारद मुनि का ऐसे ही एंट्री होता है हर स्थान पर। अम्बरीश महाराज के एक भाई थे जिनका नाम था पाप राजा। ये पाप राजा जो था दिन रात नशे में चूर रहता था, कभी यह नहीं सोचता था कि मेरा मरने के बाद क्या दिशा होगा। और हुआ यूं कि अम्बरीश महाराज चाहते थे कि मेरा भाई कुछ भक्ति करे, तो उन्होंने नारद ऋषि को इनवाइट किया, निमंत्रण किया कि हे ऋषिवर, आप कृपा करके आइए मेरे घर पर, मेरे भाई को भक्त बनाइए, जैसे हैज यूजुअल जैसे भक्तगण करते अपने घर पर और सदस्यों को भक्त बनाने के लिए और भक्तों को लेकर जाते हैं। तो वैसे नारद मुनि ने कहा ठीक है रखेंगे। अब उनके घर में कार्यक्रम वगैरह रखा था और वहां पर ही नारद मुनि प्रवेश किए। अब जब प्रवेश किए तो ये मंच पर बैठा था और शराब का प्याला लेकर बैठा था और बड़े चूर में था उस नशे के। अब यहां पर नारद मुनि आकर कहने लगा कि हरी बोल। तो जैसे ये कहा तो घूर के देखने लगा, फिर बोला हरी बोल। अब जब फिर बोला तो उन्हें और कुछ सूझा नहीं गया, सीधा शराब का बॉटल लिया, भागा और वहां से नारद मुनि भागे। अब वो नारद मुनि आगे भाग रहे और ये पीछे भाग रहे, और भागते भागते नारद मुनि कहने लगे, मैं तो जा रहा हूं लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो ये जरूर पूछना प्रश्न कि मरने साधु संघ लौ मात्र साधु संघ का क्या लाभ है। अब ऐसे कहकर वहां से अव्यक्त नारद ऋषि भाग गए। अब इनके मन में ये प्रश्न छप गई, लव मात्र साधु संघ। और हुआ यूं कि ऐसे ही उनका जीवन बीत गया, मृत्यु आया, मृत्यु के पश्चात यमदूतगण आए उसे पकड़ने। अब जब यमदूतगण उसे पकड़कर लेकर जाने लगे, यमराज के पास जब उनको खड़ा किया गया तो यमराज ने उसका पूरा जीवन के पूरे चरित्र को लिखा, इन्होंने तो जीवन भर पाप किया। बोला कोई चांस नहीं तुम्हारा, तुम दीर्घ काल तक नरक में सड़ोगे, तो अंतिम इच्छा है क्या? बोला हाँ एक इच्छा है, उसे बात याद आ गई। बोला मेरा एक प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर आप जो बोलो तो मैं जहां जहां जाना है वहां चला जाऊंगा। बोला क्या? ये लव मात्र साधु संघ का अर्थ क्या है? यमराज ने कहा तो बड़ा लंबा चौड़ा उत्तर है, अब मेरे पास समय भी नहीं है, पीछे बहुत सारे लाइन में भी खड़े, तो बेहतर है तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो ब्रह्मा जी जो है ये पूरे सृष्टि के रचेता हैं और वो ज्यादा वेद को जानते, वो अच्छी तरह समझाएंगे। तो ब्रह्मा जी के पास लाया गया। अब यमदूत लोग कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, इनका ये प्रश्न है, इनको अब नरक जाना है, लेकिन अंतिम प्रश्न यह है, अंतिम सवाल यह है कि लव मात्र साधु संघ का अर्थ क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ा बड़ा उत्तर है और इस उत्तर को देने के लिए अभी मेरे पास समय भी नहीं है। ब्रह्मा जी जो जनरल मैनेजर, उनके पास कहाँ समय होगा, इतने व्यस्त है। उन्होंने कहा कि शिव जी हिमालय में निछले ऐसे ही भी है, उनको जाके पूछ लो, जवाब दे देंगे। अब गए महादेव के पास, हिमालय में आकर महादेव को पूछे कि इनका ये प्रश्न है, लव मात्र साधु संघ का अर्थ क्या है, बताइए। महादेव ने कहा जब आप लोग हिमालय तक आए गए, निकटमय वैकुंठ उन्हीं से पूछ लो, वही अच्छा उत्तर देंगे। अब फिर गए नारायण के पास, नारायण को जाकर पूछे कि इनका ये प्रश्न है कि लव मात्र साधु संघ का अर्थ क्या है। हम यमराज से ब्रह्मा जी जी से महादेव महादेव से अभी आपके पास आए, अभी आप बताइए। तो नारायण कहने लगे इन्हें यहां रख दो, बाकी जा सकते हैं। और उनको वही स्थान मिल गया। केवल थोड़ा सा साधु संगति अगर किसी ने अपने जीवन में प्राप्त किया तो निश्चित है कि उनका सुखी होगा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में रामानंद राय, श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को पूछते हैं कि जीव का सबसे बड़ा दुखदायी स्थिति क्या है। तो रामानंद राय ये कहते हैं, स्वजीवन अधिकम प्रतियम श्री विष्णु जन संगत। तो पहले तो कहते हैं कि भक्तों का संगति जो है सबसे ज्यादा, अपने प्राण से भी ज्यादा प्रिय है भक्तों की संगति। और जिस व्यक्ति ने विच्छेदन क्षण यथा, एक क्षण के लिए भी अगर किसी ने भक्तों का संगति से विलक हुआ, या एक क्षण भी अगर भक्तों को भक्तों की संगति से अगर हटा दिया तो न सुखम अंश लभावन। वो कहते हैं कि एक पल भर भी वो थोड़ा भी सुखी नहीं होगा, उसके लिए सबसे बड़ी दुखदायी स्थिति वो रहेगी जब उसको भक्तों की संगति से हटा दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या है भक्तों के लिए? सबसे बड़ा सजा यह है कि भक्तों का संगति छूट जाना, ये सबसे बड़ा सजा है। और ऐसे होने से क्या होगा? तो चार प्रकार के दुखदायी स्थिति होगी। तो पहले कहते हैं सत्संग रहितो मरते आप, तो उसे सत्संग प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा बताते हैं माम आराध्य दुख अर्थ, तो कहते हैं कि भगवान का जो पूजा जो है उसे करने के लिए उसे मौका प्राप्त नहीं होगा। फिर तीसरा कहते हैं कुटुंब आसक्त मानस, और कुटुंब के प्रति उनकी दिन ब दिन उसकी आसक्ति बढ़ती जाएगी। वृद्ध सेवा परिचित, और वरिष्ठ वैष्णव की सेवा से वो वंचित हो जाएंगे। ये चार प्रकार के कष्ट उस पर आ गिर पड़ेगा, बिजली जिस प्रकार आ गिर पड़ता है वैसे उनका जीवन पूरा नरकीय स्थिति बन जाएगा अगर जिसने अपने जीवन में साधु संगति को छोड़ दिया। अब यहां पर नल कुबेर मणिक्यू का क्या उनका सौभाग्य था कि साक्षात श्रीपाद नारद ऋषिवर उनके समक्ष खड़े हुए। यहां पर जो शब्द जो है यदृच्छया यानी कि सौभाग्य, वो उनका सौभाग्य था। और वैसे सौभाग्य से उन्हें यहां पर नल कुबेर और मणिग्रू को साधु संगति का लाभ हुआ। तो सौभाग्य क्या था? उसकी साधु संगति। तो जब तक व्यक्ति अपने जीवन में सौभाग्य को प्राप्त नहीं करता तब तक वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाता, सौभाग्य से ही वो भगवान का दर्शन कर पाता है। जैसे पांच प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों के विषय में चर्चा किया गया है, जिन्होंने अपने जीवन में सौभाग्य प्राप्त किया तब जाकर उनको भगवान का दर्शन हुआ। जैसे रावण के विषय में जहां वर्णन आता है कि रावण नारद मुनि को कहने लगे, हे नारद मुनि जी मुझे ब्रह्म ज्ञान दो। नारद ऋषि कहने लगे नहीं, आप योग्य नहीं हो ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए। अब रावण को बड़ा गुस्सा आया, बोला मैं ब्राह्मण हूं और मुझे कह रहे मैं ब्रह्म ज्ञान नहीं ले सकता हूं, मुझे चाहिए, मेरा 10-10 मस्तक है दिखाई नहीं देता है। तो बोला हाँ दिख तो रहा है लेकिन तुम योग्य नहीं हो। सीधा तलवार लेकर नारद मुनि के गर्दन में रख दिया, कैसे तुमने बोला मैं योग्य नहीं हूं? तो यही है, यही तुम्हारे अयोग्यता का कारण है। सीधा नारद मुनि पे गर्दन पे तलवार रख के कह रहा है सब सिखाओ। तो उन्होंने कहा तुम योग्य नहीं हो, नहीं हो। उन्होंने अपना तलवार घुमाया नारद ऋषि पर, और जब घुमाया तो कुछ हुआ नहीं, आर पार हो गया। तो रावण भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है, कि ये तलवार तो आर पार हो रहा है, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तब ऋषि नारद ऋषि पूछने लगे, नारद ऋषि को पूछने लगे रावण कि ऐसा दिव्य शरीर कहां से मिला तुम्हें, ये मुझे चाहिए। तब उन्होंने कहा अगर ऐसा प्राप्त करना है तो फिर तुम्हें शरणागति को स्वीकारना होगा। और रावण इसको तैयारी नहीं था। तो यहां पर नारद ऋषि के कुछ संगति के कारण उन्हें कुछ ऐसा सुकृति मिला जिस सुकृति से उन्हें भविष्य में भगवान का दर्शन हुआ, प्रभु रामचंद्र जी का साक्षात दर्शन हुआ। कंस, कंस को भगवान कृष्ण का दर्शन क्यों हुआ, तो कहते हैं कंस के विषय में कि कंस की क्या स्थिति थी। अरिते निशते दैत्य कृष्णेना अद्भुत कर्मणा, नारद मुनि आकर कंस को कृष्ण के अद्भुत कर्मों को आकर बीच बीच में सुनाते थे और वो बताते थे कि देखो कृष्ण ने क्या क्या अद्भुत कर्म किया है। तो कमसेया यथा भगवान नारदो देव देवदर्शनम, और ऐसे करने से नारद देवदर्शनम, इस प्रकार करने से नारद मुनि के द्वारा भगवान का उपदेश देने से नारद मुनि से उन्हें सुकृति प्राप्त हुआ, और वो सौभाग्य प्राप्त वो अर्जित करके वो कंस ने भविष्य में जाकर भगवान का दर्शन किया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार पूतना भी, पूतना ने भी इसी प्रकार उन्होंने भी अपने जीवन में, पिछले जीवन में उन्होंने किस सुकृति को प्राप्त किया था, जिस सुकृति के कारण उन्हें भगवान का वास्तविक दर्शन हुआ। पहले तो ब्रजवासियों का संगति हुआ और तब जाकर उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कालिया, कालिया ने भी उन्होंने इस प्रकार उनका क्रूर स्वभाव था कि भगवान ने तो विचार कर लिया था कि बस इसे अब खत्म ही करना है। तो जब भगवान उनके मस्तक पर नृत्य कर रहे थे तो नृत्य करते हुए वो इतना हताश परेशान हो गया कि कालिया अंततः गत्वा अपने समस्त प्रकार के द्वेष को परित्याग कर दिया और संपूर्ण रूप से उन्होंने कृष्ण का शरण को ग्रहण किया। मगर तत्पर भी कृष्ण ने क्षमा नहीं किया। जब उनकी नाग पत्नी आकर जब प्रार्थना की तब भगवान कृष्ण ने क्षमा किया। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते यश्यानुदेव यश्यानुभाव श्यान देव विद्महे तवांग्री रेणु स्पर्शाधिगारा यद वांछय श्री ललना चरतपो विहाय कामान सुचिरम दृढ़व्रता। वो कहते हैं कि मेरे पति ने ऐसा कौन सा शुद्ध कार्य किया कि जिनके कारण उनका आपका चरण कमल उनके मस्तक पर नृत्य कर रहा है, ऐसा कौन सा सौभाग्य कार्य किया। तो वास्तविक कालिया जो थे ये पिछले जन्म में इन्होंने एक ऋषि के एक भक्त के चरण का चरणामृत को उन्होंने पिया नहीं था, केवल उन्होंने मस्तक पर घुमा लिया था, और मस्तक पर घुमा फेर देने के कारण उनके मस्तक पर भगवान ने अपने चरण कमल को स्पर्श किया। अगर पीते तो क्या नहीं होता। तो क्योंकि वो इसलिए नहीं पिए क्योंकि उन्होंने देखा इनका पैर सड़ा हुआ है, तो उन्होंने पहले से अपराध कर दिया भक्त के चरणों पर। लेकिन तत्पर की कुछ सुकृति था जिस सुकृति से उनका जीवन तर गया। तो ये असुर, असुर के योनि में, असुर के जीवन में भी अगर वो सुकृति प्राप्त करता है तो जिससे भगवान का दर्शन होता है। और इतना ही नहीं, पापी से पापी जैसे अजामिल, अजामिल ने भी अपने जीवन में जब साधु संगति प्राप्त किए तो साधु संगति के बाद ही उन्हें भगवान का दर्शन करने का मौका प्राप्त हुआ। अनायास उन्होंने भगवान का नाम ले लिया नारायण करके, और क्योंकि वो साधुओं ने उनको ये नाम दिया था उनके पुत्र को, और कुछ साधु लोग आकर नामकरण करके उनके पुत्र का नाम रखा नारायण, और इस कारण से निरंतर नारायण नारायण पुकारते थे। और नारायण नारायण पुकारने मात्र से उनके जीवन में इतनी सुखी प्राप्त हो गई कि मरते समय जब उन्होंने घबराते हुए नारायण पुकारा, तब देखिए जीवन भर बात किया, तत्पर भी विष्णु दूत का दर्शन हुआ, कोई नियम ने पालन किया फिर भी विष्णु दूत का दर्शन हुआ, और केवल अपने पुत्र को वियोग से पुकार रहे थे, पुत्र स्नेहवश उन्होंने नाम उच्चारण किया, तत्पर भी विष्णु दूत का दर्शन हुआ। तो ऐसे पापी की अवस्था में भी उनका उनको मोक्ष की गति प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, जगाई मधाई, तो जगाई मधाई को जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगाई मधाई के समक्ष खड़े हो गए सुदर्शन चक्र लेकर, तो जगाई जगाई कहते हैं, अमी देखी अलामत तुम्हार रक्त पड़ा संगे संग सांगो उपांग आस्तु पार्षद सब संगे। यहां कह रहे जगाई कि हमने तो नित्यानंद प्रभु के मस्तक को फोड़ दिया और फोड़ के रक्त निकाला, बदले में कृष्ण प्रेम मिल गया। जगाई मधाई जैसे इस प्रकार की अवस्था, इतना दुर्गति उनकी थी, मगर उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया, लेकिन तत्पर भी नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु है कि अपने साधु संगति के द्वारा उनका पाप ही नष्ट नहीं किया, साथ में कृष्ण प्रेम भी प्रदान किया। और क्योंकि वहां पर साधु संगति हुआ, अब इतना ही नहीं, अब तीसरा जो है वो है प्रकाशानंद सरस्वती का उदाहरण। अब ये तीसरा जो जो सिद्धांत से वंचित हो गए, वैष्णव सिद्धांत से अलग रास्ते में भटक रहे, तो उन्होंने भी सुकृति किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, जब महाराष्ट्र ब्राह्मण ने जब उनको आमंत्रण किया था मेरे घर पर आकर भोजन करिएगा, और उस आमंत्रण को स्वीकारते हुए जब श्री चैतन्य महाप्रभु गए, तो वहां पर प्रकाशानंद सरस्वती भी पहले से बैठे थे, और उनके 10,000 शिष्य के साथ, और बड़े तेजस्वी दिख रहे थे प्रकाशानंद सरस्वती। और यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे ही प्रवेश किए, तो उन्होंने ये दशा देखकर वो जहां पर पैर या पग धोने का जो स्थान होता है उस स्थान पर वो भिड़ गए महाप्रभु। तब ये प्रकाशानंद सरस्वती दूर से देख रहे थे कि एक तेजस्वी युवक सन्यासी वो दूर बैठा है, और वो जहां पर बैठने का स्थान नहीं है, तो उनको ठीक नहीं लगा। प्रकाशानंद सरस्वती स्वयं गए और अपने हाथ पकड़कर उनको उठाकर अपने बगल में लाकर बिठाए, तो कहते आपने प्रकाशानंद हाथे धरे वसीला सब मध्य सवा संगे। उन्होंने अपने हाथ से श्री चैतन्य महाप्रभु को उठाकर अपने सभा के बीच बिठाया, और वही प्रकाशानंद सरस्वती को सुकृति अर्जित हुआ, जिस सुकृति से, जिस सौभाग्य से, जिस साधु संगति से उनका वापस जो मायावात जो भावना थी वो हट कर पुनः भक्ति की भावनाओं में लग गया। तो वैसे केवल साधु संगति से। और चौथा जो उदाहरण है, और वो है ध्रुव महाराज, जो कि एक मासूम की भावना यहां पर दिखाई देता है। अब ध्रुव महाराज एक मासूम बालक थे, लेकिन नारद मुनि का वहां पर संगति हुआ, और संगति होने मात्र से ध्रुव महाराज को भविष्य में जाकर भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो ऐसा वर्णन आता है, श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में कहते हैं कि ध्रुव महाराज की ऋषि की इतनी आकांक्षा थी, और वो कौन छोटी मोटी आकांक्षा ने पूरे विश्व का अपने पिता से बड़ा राज्य प्राप्त करना, ये उनकी इच्छा थी। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद कहते ध्रुव वॉज वेरी सिंपल इनोसेंट डिवोटी, वेरी सिंपल डिवोटी, तो सिंपल क्यों कहा गया है, सरल क्यों कहा गया है? क्योंकि ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के समक्ष अपने हृदय की सारी बात बता दी है। उन्होंने उनके समक्ष कोई द्वंद की भावना नहीं रखा, यानि कि जबरदस्ती थोप रहे ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, और जबरदस्ती इस बात को नहीं थोप रहे। वो कह रहे कि मेरे मन की ये अवस्था है और ये अवस्था है, तो मुझे आप मदद करो, नहीं करोगे तो बाजू हटो, मैं जा रहा हूं आगे। तो उनकी इतनी सरल भावना होने के कारण उन पर जल्दी कृपा बरसी। तो हमें अपने भावनाओं को भगवान के समक्ष सरलता पूर्वक पेश करने से भगवान जल्दी कृपा देते हैं, ना कि डबल रोल खेल गया द्वंद की भावना रख के। और वैसे ही ध्रुव महाराज, उनके भावना इसी प्रकार सरल होने के कारण उन्हें कृपा प्राप्त हुआ। नारद ऋषि ने अपने हस्त कमल को ध्रुव महाराज के मस्तक पर घुमाया और उनके मस्तक पर घुमाने से ऐसे बताया जाता है कि जब बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जब छोटे पर जब अपना हाथ रखते, ऐसे कहा जाता है कि हाथ से उनका जो पुण्य जो है वो पुण्य उस पर ट्रांसफर किया जाता है। और वैसे ही श्रीपाद नारद मुनि के विशेष आशीर्वाद से ध्रुव महाराज का जो बचा कुचा जो अनर्थ था वो भी नष्ट हो गया। और इस तरह ध्रुव महाराज भगवान के भजन करने में दृढ़ता को प्राप्त किए। और इस तरह ध्रुव महाराज नारद मुनि की संगति के आधार पर उन्होंने आगे जाकर भगवान के दर्शन किए। ये सरलता। इसी प्रकार जो सुकृति जो पुण्यवान व्यक्ति को प्राप्त होता है, और वो है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज स्वयं कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, वो कहते हैं कि अपिते भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सुत प्रीत सुत प्रिय। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे मौका क्यों दिया ये श्रीमद् भागवत इत्यादि सुनने का? वो मौका इसलिए दिया क्योंकि पांडु जो है, जो मेरे पिता है, ये मेरे पिता के पिता दादाजी, ये भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय व्यक्ति हैं, और इस कारण से भगवान उनसे अपना स्नेह दिखाने के लिए मुझे मौका दे रहे हैं। और वैसे उस साधु संगति का उनको भी लाभ हुआ। तो वैसे जब जीवन में जब कोई अपने इस साधु संगति को अगर प्राप्त करता है, तो निश्चित है कि उनका जीवन घूमकर वापस कृष्ण की ओर चला जाता है। तो हम सभी लोग अपने जीवन में इस बात को देख सकते हैं कि हमने भी अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत के आंदोलन को किस प्रकार स्वीकार किया, क्योंकि किसी साधु के संगति होने के कारण। अब जाकर हमारे जीवन में भक्ति करने का मौका प्राप्त हुआ। इसलिए कहा जाता है कि साधु संगति जो है, ये साधु जो होते हैं, ये भगवान के इनविटेशन कार्ड है। और इस इनविटेशन कार्ड को व्यक्ति को स्वीकारना पड़ता है। तो क्या करते हैं भगवान, दो प्रकार से इनविटेशन देते हैं। एक है साधु को हमारे जीवन में भेजते हैं और कहते हैं कि आइए मेरे पास, और साधु की बात को अगर ठुकरा देते हैं तो भगवान दूसरा इनविटेशन देते हैं और वह भरपूर दुख देते हैं। और प्रचुर मात्राओं में जब दुख की भौचार जब आती है, जब उसकी मति सुधरती है, तो भगवान के पास आता है या तो फिर कंस के जैसा हो जाता है। तो वैसे उसे इस साधु का जो इनविटेशन जो भगवान जो दिए रहे साधु के द्वारा, उसे व्यक्ति को स्वीकारना है। ऐसे ही यहाँ पर नल कुबेर के जीवन में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने इस नारद मुनि की कृपा को प्राप्त किया है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। कुछ कमेंट? थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की
उसका एकमात्र अधिकारी मैं ही हूँ।
अच्छा।